जावेद साहब, वसीयत में और विरासत में बुनियादी फ़र्क क्या है? ये पहला सवाल का पहला हिस्सा है। और दूसरे हिस्से में वो फरमाते हैं कि विरासत के कवानीन तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान कर दिए हैं, क्या वसीयत करना भी एक फ़र्ज है? किसी भी शख्स को वसीयत लाजमी करनी चाहिए या अगर वो वसीयत ना भी करे तब भी कोई मुजायका नहीं है?
वसीयत करनी चाहिए,
करनी चाहिए।
देखिए, अल्लाह ताला ने जो हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं उनमें भी बास चीज़ें इंसान के लिए छोड़ दी। मैं मिसाल देता हूँ, आपके वालदैन का एक हिस्सा मुकर्रर किया गया है,
ठीक।
इसी तरह से बीवी या शौहर में से किसी एक का हिस्सा होगा, यानी बीवी दुनिया से रुख्सत हुई है तो शौहर का होगा, शौहर रुख्सत हुआ है तो बीवी का होगा। ये हिस्से देने के बाद बाकी औलाद,
ठीक।
औलाद में अगर सिर्फ लड़कियाँ हों तो एक लड़की का हिस्सा आधा है, दो लड़कियाँ हों या इससे ज़्यादा हों तो दो तिहाई है। इसके नतीजे में कुछ बच जाएगा तो आपको कुछ फरमाना होगा। ये मुमकिन है कि आपके वारिस ही मौजूद नहीं
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है,
फिर आपकी मीरास किसके पास जाएगी? तो आपको वसीयत करनी चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से बाज़ ऐसे आपके वारिस हो सकते हैं कि जिनकी कोई ज़रूरत, कोई खिदमत ये तकाजा करती हो कि आप उसका सिला दें या उसका लिहाज करें,
ठीक है।
एक बच्चा है, अभी उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, शादी होनी है, ब्याह होना है, आपने बाकी बच्चों को तालीम दिला दी, ब्याह दिया, सब कर दिया। कोई बेटी है मुतल्लका होकर घर में बैठी हुई है, कोई बीमार बच्चा है आपका जिसके इलाज मुआलजे की ज़रूरतें हैं, तो इन सब मकासद के लिए वसीयत करनी चाहिए,
ठीक है।
ताहम वही आदमी ये समझता है कि नहीं, बस जो अल्लाह ताला का कानून है उसके मुताबिक हो जाएगा, जो बाकी बचेगा उसके बारे में लोग फैसला कर लेंगे, और वो वसीयत नहीं करता तो ठीक है, ये उसका हक है। लेकिन अल्लाह ताला की ताकीद यही है कि वो अपने माल के बारे में वाज़े जगह पर लोगों को खड़ा करके जाए। झगड़े नहीं होने चाहिए, नज़ाआत नहीं होने चाहिए। सोसाइटी मुदाखलत करेगी तो वो आम कवानीन के मुताबिक करेगी, आपकी कोई तरजीहात हो सकती हैं,
ठीक।
इस वजह से ये ज़रूरी है कि वसीयत की।
तो जावेद साहब, ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स अपने पूरे माल की वसीयत, अपनी ज़िंदगी में वसीयत कर दे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उसके बाद उसके मरने के बाद विरासत हो ही ना, यानी उसका कोई माल हो ही ना बाकी?
नहीं, वसीयत तो कहते ही इसको है कि मेरे माल के साथ मेरे मरने के बाद क्या किया जाएगा। लफ्ज़ वसीयत मरने के बाद के लिए बोला जाता है। दुनिया में तो आपको हक हासिल है, आप जो जी चाहे करें, आप अपना सारा माल उठा के किसी को दे दें। यानी दुनिया में जब तक आप जिंदा हैं आपको आपके माल पर तसर्रुफ का हक मुतलकन दिया गया है। ये नसीहत की जाएगी, भाई इंसाफ की ज़िंदगी बसर करो, लेकिन आपके तसर्रुफात पर कोई कदगन नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं जो कुछ कमाता हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से अपने किसी बेटे को कोई चीज़ दे देता हूँ, बेटी को दे देता हूँ, मैं किसी दोस्त को दे देता हूँ, मैं किसी की खिदमत कर देता हूँ, इसमें मुझे कहीं किसी कानून की पाबंदी नहीं करनी होती। ऐसा ही मामला जायदाद का है, ऐसा ही मामला दूसरी चीज़ों का है। वसीयत का ताल्लुक मरने के बाद से है, विरासत का ताल्लुक मरने के बाद से।
तो फिर इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? वसीयत विरासत में, अगर मैं वसीयत करता हूँ कि मेरे फलां बेटे को ये दे दिया जाए, फलां बेटी को ये दे दिया जाए, लेकिन मेरे मरने के बाद वो तो कानून विरासत अप्लाई हो जाएगा उस पर, तो ये होगा कि जी इस बेटे को कानून के मुताबिक इतना मिलेगा, ये मिलेगा। तो वसीयत जो पहला सवाल का हिस्सा था, डिफरेंस क्या है फिर दोनों?
नहीं, देखिए, जो विरासत है ये रिश्तेदारी की बुनियाद पर है,
ठीक है।
यानी आपके बेटे क्या हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उनमें से कोई ज़रूरतमंद है, कोई नहीं है, इसका लिहाज किए बगैर महज बेटा होने की बुनियाद पर अल्लाह ने उनका हिस्सा मुकर्रर कर दिया, बेटी होने की बुनियाद हिस्सा मुकर्रर कर दिया, ये विरासत है,
ठीक है।
यानी इसका फैसला इस आलम का परवरदिगार कर चुका है,
ठीक है।
हर वो आदमी जो उस पर ईमान रखता है उसको रिश्तेदारों के बारे में उसने ये फैसला करने से रोक दिया, और ये बड़ी हकीमाना बात है,
ठीक है।
देखिए, बात यह है कि रिश्तेदारों के बारे में मसलन मैं आपके सामने ये चीज़ रखता हूँ, आप पहला सवाल आपके सामने ये पैदा हो जाएगा, कौन से रिश्तेदार?
जाहिर है,
नहीं, वालदैन क्या औलाद से बरतर है? अच्छा, क्या औलाद वालदैन से बरतर है? बहन भाइयों की क्या हैसियत है? बीवी का क्या मुकाम है? शौहर की क्या हैसियत है? आप मसलन ये फैसला करते हैं कि मेरी सारी मीरास वालदैन के पास जानी चाहिए, जाहिर है कि फिर बाकी महरूम हो जाएंगे। अगर इन सारे रिश्तेदारों को आप, जिनका मैंने जिक्र किया, ये आप फैसला करना चाहें कि इनमें मैं इस तरह तकसीम करूंगा तो जिसको कम या ज्यादा देंगे, दो ही सूरतें होंगी ना, या आप कहेंगे बराबर तकसीम कर दो, ये बेइंसाफी है, बदीही तौर पर नजर आ रहा है,
सही है।
अगर आप कहेंगे इसको इतना दो, इसको इतना दो, तो असल में आपका ये फैसला ही बता देगा कि आप किसको क्या अहमियत देते हैं,
بالکل ٹھیک.
تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں, چونکہ اللہ تعالیٰ کو خاندان بہت عزیز ہے, رشتے بہت عزیز ہیں, انسان ان کے اندر جیتا اور بڑھتا ہے, خود فیصلہ سنا دیا ہے تاکہ انسان کے اوپر حرف نہ آئے. یہ وراثت ہے
ٹھیک,
لیکن کسی کی ضرورت, کسی کی خدمت, یہ بالکل آپ کے طے کرنے کی چیز ہے. اس لیے اس کے لیے وصیت کریں گے آپ. جیسے میں نے مثالیں دی کہ بیٹی بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو برابر ہے, بالکل تمام بیٹیاں ایک جیسی ہیں, بیٹے بیٹے ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں, اس میں آپ فرق نہیں کر سکتے. لیکن ایک بیٹے کی ضروریات ہے, ایک بیٹے نے آپ کی غیر معمولی خدمت کی ہے, یا کسی اور نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے. میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ سارے بچوں کو آپ نے پڑھا دیا, لکھا دیا, اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا, ایک بچہ ابھی تعلیم پا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, بارہ ایسا ہوتا ہے, چھوٹا بچہ ہے ابھی, اس نے تعلیم پانی ہے, اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے, کچھ کمانا ہے, کچھ شادی بیاہ کے معاملات پیش آنے ہیں, یعنی دسیوں مراحل باقی. ایسے ہی کوئی ضرورت پیش آ گئی, متعلقہ ہو گئی بیٹی, بیمار ہو گیا کوئی, کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا, سارے بچے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے, کسی ایک نے اپنا کیریئر ختم کر کے خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھا.
ٹھیک,
تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اب رشتہ داری سے نہیں ہے, یہاں کوئی ضرورت, کوئی خدمت میرے پاس آ گئی, اس جگہ آپ وصیت کریں گے. جہاں تک رشتہ داری کا تعلق ہے, اس بنا پر آپ کو وصیت کرنے سے روک دیا گیا ہے, اس میں اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جائے.
ٹھیک ہے, ایک روایت جو مجھے یاد آ رہی ہے وہ یہ کہ پھر تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو وصیت ہے وہ وارثوں کے حق میں نہیں ہو سکتی, لیکن آپ کا نقطۂ نظر اس میں ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے. آپ وصیت وارثوں کے حق میں بھی کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بیٹا ہے تو وہ اگر آپ کے لیے خدمت کے لیے اس نے اپنا کیریئر تباہ کر دیا تو آپ اس کے لیے وصیت کریں گے, لیکن وہ روایت پھر کیا ہے, کس طرح سے
وارثوں کے حق میں بربنائے رشتہ داری وصیت نہیں ہو سکتی. وارث ہونے کی حیثیت سے, یعنی میرا بیٹا وارث ہے, میرے والدین وارث ہیں, میری بیوی وارث ہے, اس اعتبار سے اللہ ہی کا فیصلہ نافذ ہوگا.
ٹھیک ہے,
یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ بربنائے وراثت نہیں کیا جا رہا, یہ بربنائے ضرورت کیا جا رہا ہے, بربنائے خدمت کیا جا رہا ہے. اس کی نوعیت بالکل الگ ہے. اس فرق کو نہ سمجھنے سے ہمارے اس پورے قانون میراث میں بہت نازک مسئلے لوگوں نے پیدا کر دیے. تو میں نے توجہ دلائی ہے کہ ایسا نہیں ہے, یعنی آپ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں حق رکھتے. اس میں تو روایت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, قرآن نے خود فیصلہ سنا دیا. آپ میراث کا قانون پڑھیں سورہ نساء میں, تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کس کو کم اور کس کو زیادہ ملنا ہے, تو رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ ہی کا فیصلہ نافذ ہوگا. اور آپ اس اصول پر کسی کو بھی کچھ نہیں دے سکتے کہ مجھے یہ بیٹا اچھا لگتا ہے یا بہتر لگتا ہے, نہیں, یہ تو ختم ہو گیا معاملہ.
ٹھیک ہے,
اس لیے لا وصیت علی وارث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کو وارث ٹھہرا دیا ہے رشتہ داری کی بنیاد پر, ان کے حق میں آپ اس بنیاد پر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے.
ٹھیک,
آپ نے کچھ کہنا ہے تو بتائیے, کوئی خدمت ہے, کوئی ضرورت ہے, کوئی مسئلہ ہے, اس کی بنیاد پہ کیجیے. کیونکہ ضرورت, خدمت, اس کو آپ جانتے ہیں, رشتہ داری کے مسئلے اس کا فیصلہ خدا نے کیا.